عينه.
شو خوايا كمان؟
بيكو شتو كينا؟
كجو تجاو؟
कुछ कहिए ना, कुछ ते आखो,
कोई गाल करो ना जी।
अस्सलामुअलैकुम सामीन, प्रोग्राम है कुछ तो कहिए। मैं हूँ आपकी मेज़बान शहनाज अजीज। मेहमान हमारे आज बड़ी मारूफ शख्सियत हैं। जब मैं आपसे उनका तारुफ करवाऊंगी तो यकीनन आप उनको पहचान जाएंगे, लेकिन इससे पहले कि हम उनसे आपकी बातचीत करवाएं, एक झलक उनके काम से। तो सामिन फिल्म भाई लोग है, और इसके डायरेक्टर और मारूफ कहानीकार और सैकड़ों फिल्मों के डायरेक्टर और कहानीकार परवेज़ कलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। जी परवेज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। परवेज़ साहब
जी,
अब आपकी आवाज़ आई है। तो परवेज़ साहब, कोई किसी आप फंक्शन में थे, तो यकीनन कोई फिल्म से मुतालिक ही फंक्शन था जिसमें थे आप इस वक्त।
जी, वो फिल्म के मुतालिक ही फंक्शन था। रिवाइवल और सर्वाइवल की बातें हो रही थी, गुफ्तगू की हद तक।
हाँ सही, मैं भी ये कहने वाली थी क्योंकि सिनेमा से एक देखने वाले की हद तक मुझे बहुत ही प्यार है, लेकिन ये कि कई दफ़ा इसमें डिस्कशंस हुए मुस्तफ़ा कुरैशी साहब और बहुत सारे लोग जो कि डायरेक्टर हैं, कहानीकार हैं और जो मोहब्बत करते हैं सिनेमा से, वो आए भी। लेकिन मेरा ख्याल है वादे सब हुकूमतें करती हैं, लेकिन शायद हुकूमत का कोई बहुत दिलचस्पी है नहीं फिल्म मेकिंग में। यह है
नहीं, वो असल में ये मैं आपको अर्ज कर दूँ कि ये शुरू से ही यहाँ जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री है, ये एक यतीम बच्चे की तरह ही है जिसके सर पे कभी किसी ने दस्ते शबकत नहीं रखा। हाँ देखिए, अब आगे एक काम किया इस हुकूमत ने कि इसे इस्तना कर दिया टैक्स से, तो थोड़ा सा वो अब ये पोजिशन है माशाल्लाह कम बैक हुआ है। ऑनेस्टली कि आप देखिए कि कराची में माशाल्लाह इस वक्त 25 से 30 फिल्में बन रही हैं और लाहौर में इस वक्त 7 से 8 फिल्में। ये डिजिटल फॉर्मेट पे सारा काम हो रहा है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को सामने रख के। साउंड जो है वो 5.1 जो है जो इंटरनेशनल मैार वो प्रॉपर जो है उसको किया जा रहा है, और ये यूथ भी उसमें शामिल है और चंद मेरे जैसे सफेद बालों वाले भी शामिल हैं उसमें। लेकिन
अच्छा।
यूथ माशाल्लाह हमें बड़े पुरउम्मीद हैं और खुशाइन मैं समझता हूँ कि वक्त है कि यूथ ने जो है वो बड़ा संभाला है और वो इंटरनेशनल मार्केटिंग पर भी उनकी जो है, तो हमारे यहाँ चूंकि थोड़ा सा जरा फुकदान रहा पहले, लेकिन अब एक दफा फिर से दोबारा पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जो है वो अपने पाँव पे खड़ी हो रही है। चूंकि कराची हो, पिशावर हो, लाहौर हो, कोई भी जगह हो, वो असल में पाकिस्तान की फिल्म कहीं भी बने वो पाकिस्तानी फिल्म है, ठीक है ना जी।
बिल्कुल।
तो इस वक्त माशाल्लाह, हाँ तो इस वक्त ये माशाल्लाह बड़ा अच्छा हो रहा है। अभी भी हम अभी मैं अपनी फिल्म ब्लाइंड लव देख सकते हूँ और वहाँ मैं आया हूँ, तो ब्लाइंड लव बन रही है, उसको डायरेक्ट कर रहे हैं फैसल बुखारी, मैंने लिखी है वो खाली फिल्म, तो माशाल्लाह हो रहा है। फिर अभी मैं कराची में अभी डिजिटल फिल्म बना के आया हूँ जी, दिल को मारो गोली शूट हार्ट
जी,
ठीक है जी। तो अब देखिए ना, हम भी इस उम्र में भी काम कर रहे हैं, अभी भी काम कर रहे हैं। जब से हमने
वैसे आप बहुत उम्र का जिक्र कर रहे हैं परवेज कलीम साहब, मगर आपकी अभी ये जो मैंने गाना सुनवाया भाई लोग का और दिल को मारो गोली, कुछ फिल्मों के मैंने वो देखे जो प्रोमोज आपने बना रखे हैं, तो माशाल्लाह से मतलब फिल्मों को देख के तो लगता है कि दिल खासा जवान है आपका अभी तक। बहुत मतलब
वो ये है सर, वो ये है कि दिल के चेहरे पे कभी झुर्रियां आती नहीं, और बुढ़ापा तो बुढ़ापा होता है, बाल तो सफेद हो ही जाते हैं।
बिल्कुल
ठीक है जी, सर जाते हैं जो जिनके सर में नहीं बाल आते सफेद, लेकिन वैसे ही अगर देखा जाए तो बुढ़ापा तो बुढ़ापा होता है, वो तो जाहिर है। आई एम 60 नाउ, तो वो जाहिर है कि वो तो होगा, लेकिन ये है कि अल्लाह का ये शुक्र है कि इरादे अंदर जो कुव्वत है, जो एनर्जी अल्लाह ने दी हुई है, वो नौजवानों जैसी ही है, तो आज भी काम कर रहे हैं शुक्र है, वरना तो आपको पता फिल्म शूट नहीं हो सकती जब आदमी बिल्कुल ये इस पोजीशन में आ जाए।
वैसे आपकी फिल्मों में जितना एक्शन होता है, जैसे भाई लोग है और जो टॉपिक है, ये वही है जो मतलब यंगस्टर्स जो है बहुत देखते हैं, और असल में तो फिल्म में देखने वाले सबसे ज्यादा नौजवान ही है। तो ये हम अभी बात करेंगे बहुत सी, ये आपकी पूरी एक घंटे में समेटना तो मुश्किल है, कोशिश करेंगे बहुत सारी चीजों को, लेकिन उससे पहले हम एक अपने भी थोड़ी सी प्रोमो बजा के थोड़ी सी शोहरत कर लें, फिर आपसे बात होती है।
आवाज है दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
जब मैं 10 साल का था, 12 साल का था, तो मैंने गिटार सीखना शुरू कर दिया था।
हमारी और आपकी जिंदगियों में जन्म लेने वाली ऐसी कहानियाँ जिन्हें अक्सर कोई सुनने वाला नहीं होता।
हम एक अरसे से आपको ये कहानियाँ सुना रहे हैं, लेकिन हम ही क्यों, अब आपकी बारी है।
बहुत डर लगता है, फिर बच्चे लोग को मारते हैं, अभी बिजली है, ऐसा करंट लगाते हैं।
माइक्रोफोन की दूसरी जानिब नहीं बल्कि उसके सामने हमारे साथ साथ मुंतखब कहानियों को हम आपकी अपनी आवाज में उर्दू रेडियो और वेब पर सुनवाएंगे।
प्रोग्राम में नशर होने वाली हर कहानी किसी न किसी इनाम की मुस्तहक होगी।
2 लाख रुपए लाओ, अपने बच्चियों को ले जाओ।
आप ये कहानियाँ हमें ईमेल भी कर सकते हैं urdu.feedback@voanews.com। कहानियाँ भेजने के लिए पाकिस्तान में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 1353 यानी 1353 इस्लामाबाद पाकिस्तान।
और भारत में हमारा पता है मेरी कहानी वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस, पीओ बॉक्स नंबर 5437 या 5437 नई दिल्ली 110011 भारत। उर्दू सर्विस के ये प्रोग्राम मीडियम वेव 972 पर पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नशर होते हैं।
तो इंतजार रहेगा आपकी कहानियों का।
मजीद तफसीलात के लिए urduvoa.com। आवाज़ दोस्त इनामी मुकाबला मेरी कहानी।
इंसान को होश नहीं रहता है, दुनिया ना उलट जाती है।
तो सामीन, आपको मैं टोल फ्री नंबर भी लिखवा दूं, क्योंकि इतने अच्छे से डायरेक्टर और कहानीकार हमारे साथ हैं, आप फोन करना चाहेंगे 0800-777-7789 इस नंबर पे आप फोन कर सकते हैं। कुछ नंबर हमारे पास है, हम कोशिश करेंगे फोन करने की। तो हम शुरू से जरा चलते हैं आपकी, यानी जब सचमुच आतिश जवान था और बल्कि बच्चा था, क्योंकि आपके वालिद साहब जो थे उनका ताल्लुक भी मतलब डायरेक्शन या कहानी के हवाले से नहीं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री से रहा है,
माइग्रेट करके आया थे हिंदुस्तान से यहाँ लाहौर। तो यहाँ ना जो सेटलमेंट कमीशन होते थे वो अलॉट में उस दौर में हुआ करती थी, तो उनको खाने वाले रादू पैलेस खाना अलॉट हो गया था।
अच्छा,
तो मैं यहाँ लाहौर में पढ़ता था, तो चूंकि मुझे छुट्टियों में सनमा जाने का वाले साहब ले जाते थे लाहौर आके, मैं वहाँ जाता, वहाँ जाके मैं उनका वो प्रोजेक्टर देखता, वहाँ वो फिल्म को देखता रोल करते हुए, फिर स्क्रीन को देखता, साउंड देखता, तो मुझे एहसास होता कि ये क्या है। तो आप यकीन कीजिए कि वो मेरे अंदर डेवलप होता रहा, शायद मेरे अंदर कुछ फिल्म मेकर जो था वो डेवलप ना होता अगर मेरा ये एनवायरमेंट ना होता मेरा माजी का
जी।
तो लिहाजा वो यूँ समझ लीजिए मैं बस फिर अभी पढ़ ही रहा था, तो मैंने तालीम अपनी अधूरी छोड़ के तो मैं स्टडीज में इन हो गया, और मैंने काम जो है एक अप्रेंटिस असिस्टेंट से काम शुरू किया है, ये जो तारे में पेटते हैं, और कैमरे पे मैंने काम शुरू किया था। ऋषि कवि साहब मरहूम जो सिनेमेटोग्राफर थे, बहुत मशहूर मारूफ हमारी फिल्म इंडस्ट्री के, उनके साथ मैंने एज अप्रेंटिस काम शुरू किया था। और फिर अल्लाह का शुक्र हुआ कि मैं एज डायरेक्टर, एज असिस्टेंट डायरेक्टर, फिर काम करना शुरू किया हुसैनी साहब के साथ, हमारे वो भी बुजुर्ग थे उस्ताद थे, उनसे काम किया, फिर और लोगों के साथ काम किया, फिर यानी सरदार साहब के साथ काम किया, बहुत से लोगों से काम करते करते तकरीबन कोई 15 वर्ष के बाद मैं एज ए डायरेक्टर मेरा जरूर हुआ और मैंने फिल्में जो है वो एक दो बनाई और वो कोई खातिर खास कामयाबी हासिल न कर सकी।
तो कौन सी शुरू में कौन सी फिल्म थी आपकी पहली जो बनाई?
जख्म थी मेरी पहली फिल्म।
अच्छा,
तो वो कुछ बहुत आला दर्जे का कारोबार ना कर सकी और उसमें असल में कुछ शुक्म थे, वो कुछ प्रोडक्शन के हवाले से थे, क्योंकि मैं नया था, मुझे चांस दिया गया था, तो बड़ी मुश्किल में था मैं, कुछ ऐसे नाम मसाइल से गुजर के वो फिल्म बनी थी, बहुत अजीब। खैर, उसके बाद फिर अल्लाह ने किया तो मैंने बाजार हुस्न जो है वो की, 88 की बात है ये, और बाजार हुस्न नदीम और सलमा आगा और इन लोगों की थी, और पिक्चर अल्लाह ने फिर उसको कामयाबी का वो चेहरा दिखाया कि हिंदुस्तान ने उसको 2 दफा कॉपी किया। मैम, सबसे बड़ी बात है कि दो हिंदुस्तान में 11 फिल्में मेरी कॉपी हुई है,
अच्छा।
रिकॉर्ड है ये।
कौन कौन सी फिल्म, थोड़ा सा अगर आप
बाजार हुस्न, उसने पति पत्नी और तवाज के नाम से बनाई थी, मैंने यहाँ कैद लिखी और संगीता ने डायरेक्ट की और मैंने लिखी, और वो फिल्म जो है वहाँ शक्ति के नाम से बनाई गई
जी।
फिर उसके बाद मेरी फिल्म है जल के बदन, जी क्यों के नाम से वहाँ सलेमान खान करीना और उन्होंने वो बनाई थी, और इस तरह मेरी फिल्म है आपदा, मैंने बहुत देर पहले एक पंजाबी की बड़ी सॉफ्ट फिल्म लिखी थी मैंने,
अच्छा।
वो जो फिल्म थी वो उस फिल्म को लागा चुंडी में दाग बनाया, इस तरह 11 फिल्में हैं।
अच्छा।
मैं सुनाऊंगा प्रोग्राम गुजर जाएगा 11 फिल्में बताते।
चलिए हम तो, उसकी तफसील ऐसा ऐसा फिल्मों के हवाले से बातें होगी, लेकिन मुझे आपके पीछे किसी बड़े शोला बयां मुकर्रर हैं, उनकी आवाज आ रही है, थोड़ा सा अगर मेरी फरमाइश और कर दूंगी थोड़ा सा और दूर हट जाइए आप इस जगह से तो हमें बेहतर आपकी आवाज, क्योंकि पीछे से काफी उनकी ऊंची आवाज आ रही है तकरीर की।
जी
जी, तो थोड़ा दूर जा सकते हैं आप
इस,
तो हम थोड़ा सा एक गाना आप ही की फिल्म से, यही भाई 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 लोग का बजा दें, और इतने आप थोड़ा फासला अगर
मैं आ गया, बाहर आ गया मैं,
अच्छा बस बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। अच्छा, हमारा ये प्रोग्राम भारत में भी सुना जाता है, खास तौर से भारतीय कश्मीर में जी, तो खुर्शीद रसूल वहीं से प्रोग्राम उन्होंने फोन पे हैं हमारे साथ, तो खुर्शीद रसूल आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं जी। खुर्शीद, अस्सलाम वालेकुम। खुर्शीद रसूल जी, जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम भैया जी, वालेकुम सलाम जी। खुर्शीद, क्या सवाल है आपका?
हाँ, मेरा सवाल ये है कि जो जो भारत की है ना फिल्म इंडस्ट्री, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तान इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में बेसिक क्या फर्क है, मेहमान से मैं पूछना चाहता हूँ।
अच्छा, आप किस जगह से फोन कर रहे हैं कश्मीर में?
जी, मैं पुलवामा से कॉल कर रहा हूँ।
पुलवामा से? अच्छा, बहुत शुक्रिया खुर्शीद रसूल आपका।
सना जी, सवाल इनका था कि ये कह रहे हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में क्या फर्क
जी, बुनियादी फर्क है जी, बिल्कुल
यही सवाल था ना?
जी हाँ बिल्कुल।
बात यह है कि ये फर्क ये है, फर्क देखिए, थॉट्स जो होते हैं वो कागजों पे तहरीर होते हैं, फिल्म जो है वो सनलाइट पे पहले बनती थी, अब डिजिटल हो गई है तो अब और तरह से काम हो रहा है, लेकिन बात यह है कि हिंदुस्तान 24 सूबे हैं, बहुत बड़ी टेरिटरी है, इंटरनेशनल मार्केट उनके बुजुर्गों ने बहुत कैप्चर की हुई है, अभी हमारे यहाँ इतनी वो नहीं थी, लोग इतने नहीं थे अवेयर, तो उन्होंने पुराने जमाने में जब अभी मिचल पे काम हो रहा था, हम पुराने कैमरों पे वो भी काम कर रहे थे, हम भी काम कर रहे थे, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की सजा थी, सजाइया था, तो कंपेरेटिवली फिल्में बनती रही, लेकिन उसके बाद आके उनका प्रोडक्शन लेवल जो है वो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत आगे निकल गया। हमारा प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा, अभी भी आप हैरान होंगी, हमारी पाकिस्तान की सबसे महंगी फिल्म अभी तक वॉर बनी है, ठीक है, और आप यकीन कीजिए कि उससे महंगी एक फिल्म बनी यहाँ सल्तनत, वो मैंने लिखी है सल्तनत,
अच्छा,
जो 22 करोड़ रुपए की बनी है, ठीक है। लेकिन बात यह है कि हमारे यहाँ टेरिटरी इतनी नहीं है कि कोई इन्वेस्टर जो है वो इतने पैसे इन्वेस्ट करे, हम रेगुलरली ज्यादा से ज्यादा हम 2.5 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ रुपए की फिल्म तो अफोर्ड करते हैं, लेकिन इससे ज्यादा नहीं, और हिंदुस्तान 50 करोड़ से शुरू होकर 125 करोड़ रुपए तक जा चुका है। अब देखिए ना, कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो हम किसी हम अलामती ये है कि हम सपोज कंटेंट से फाइट कर सकते हैं, हम कंटेंट से कोई बात बड़ी कर सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए एजुकेशन, उसका प्रेजेंटेशन, वो हम, मेरा ख्याल है कि इतना वैसा नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे सरमाए की जरूरत होती है। तो हमें ना अभी कंट्रोल्ड और हमें लिमिटेशंस में रह के काम करना होता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो एक कंपेरेटिवली जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये हमारे पास अभी डिजिटल आया है, हमारे पास ये 4-5 वर्ष हुए हैं और हिंदुस्तान के पास डिजिटल आया हुए आज 15 साल से 20 साल हो गए माशाल्लाह, और वो मैनुअल काम कर ही नहीं रहे थे और इतना वो कर रहे थे, उनका ग्राफिक्स भी हो रहा था, चीजें भी हो रही थी, अवेयर भी थे वो लोग, ठीक है जी, एजुकेशन भी लेवल जो है उनका रेटिंग बहुत ज्यादा थी, तो वो सारा था। लेकिन कंटेंट में आज भी हम अल्लाह के हुक्म से आज भी हम यहाँ जो है वो बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं, लेकिन ये है कि वो लोग जो जिनके पास सब कुछ है, जिनके पास मार्केट है, जिनके पास इंटरनेशनल मार्केट है, जिनके पास अपनी मार्केट है 24 सूबों की, जाहिर है वो फिर 125 करोड़ की फिल्म बनाते हैं तो उसके सामने 3 लाख करोड़ की फिल्म जो है वो अपने कंटेंट से तो लड़ सकती है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो तस्वीर कैसी है, मेरा ख्याल है शायद मैं इसमें कभी भी मोबाइल से काम नहीं लूंगा, हम अभी थोड़ा सा जरा थोड़े कमजोर हुए हुए हैं, इसलिए कि हमारी फिल्में जो हैं उसमें इतनी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर कोई नहीं है ऐसा जो, हाँ आज अगर हमारे आज कॉर्पोरेट सिस्टम पे काम होना शुरू हुआ है, आज फिर से दोबारा एक रिवाइवल हुआ है, मुमकिन है कि हमारे यहाँ के आने वाले वक्त में, आने वाले सालों में हम इंटरनेशनल मार्केट को भी हमारे बंदे देख रहे हैं, अब बच्चे माशाल्लाह पढ़े लिखे अवेयर हैं, वो जा रहे हैं आ रहे हैं, बेचारे कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, ये हो रहा है, ई मेलें चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, मुमकिन है कि कल इंशाल्लाह हम भी इंटरनेशनल मार्केट को जो है वो देख सकें पूरी तरह, उस पर हम भी एक हम भी हमारे अगर उनकी 4 सिनेमाओं में फिल्म लगी तो हमारी भी 2 सिनेमाओं में लगी हुई हो, तो फिर उससे ये होगा कि जब वहां से हमें कुछ मिलेगा तो यहाँ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री जो है और इंशाल्लाह ताला जो है
आगे बढ़ेगी,
फिल्म बनाएगी।
अच्छा परवेज साहब, वैसे आपको क्या कहते हैं लोग, आपको परवेज साहब हैं आप या कलीम साहब, किस नाम से याद ज्यादा पुकारते
हैं? जी कलीम के नाम से लोग ज्यादा जानते हैं।
अच्छा कलीम के नाम से। अच्छा तो हमारे कॉलर्स हमारे साथ हैं विहारी से जफर इकबाल जी। जफर साहब अस्सलाम वालेकुम।
जफर मेरी मोहतरम बहन, बड़े अरसे के बाद प्रोग्राम में शामिल
हो। हाँ ये तो मुझे कहना चाहिए, ये क्या हरकत है, कहाँ गायब हो गए थे?
बाजी को सेहत खराब हो गई थी, इलाज करवा रहा।
अच्छा चलिए, अल्लाह में आपको सेहत याब करे।
बहन है, बात करने की दुआ बड़ी कबूल होती है, अल्लाह ताला फरमाता है।
बिल्कुल बिल्कुल,
बड़ी मेहरबानी जी।
जी
तो गुजारिश ये है कि परवेज मलिक साहब,
परवेज कलीम साहब,
कलीम साहब बड़े मशहूर थे, उनके और ये परवेज कलीम साहब के आपस में दोस्ताना है या ताल्लुक है इनका भी आपस में? वो बड़ी अच्छी फिल्में बनाते थे वो भी।
अच्छा बताइए, ये बड़े घरेलू मालूमात
है। जो 70 और 80 की दहाई में फिल्में बनती है, वैसी फिल्में बनाए ताकि इनके फैन में वो आबाद हो जाएं जी। ये मशवरा है जी,
ये तो उन लोगों में से हैं जो 70 और 80 की दहाई में बना रहे थे अच्छी फिल्में। तो चलिए, लेकिन ये बताइए, इनका सवाल ये था, ये बड़े अंदरूनी खाना गुफ्तगू राज ढूंढ के लाते हैं, पूछ रहे हैं परवेज मलिक और आप जो है नाम मुशावे हैं, तो क्या दोस्त भी हैं आप लोग आपस में?
नहीं नहीं नहीं, दोस्त नहीं, वो मेरे बुजुर्ग थे, वो मेरे सीनियर हैं।
अच्छा,
वो मेरे उस्ताद हैं। मैं जो हमसे सीनियर होता है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में, आज भी उसको जो है उसको जो हम उसका तकाबुल ही नहीं करते किसी के साथ। परवेज मलिक साहब हमारे बुजुर्ग थे, लेकिन बात यह है कि परवेज कलीम उनके बाद आया है, वो पहले थे
जी।
वो माशाल्लाह जब अरमान बना रहे थे और हीरा पत्थर बना रहे थे तो आई वॉज असिस्टेंट डायरेक्टर, प्रिंटर्स असिस्टेंट डायरेक्टर।
अच्छा,
तो वो हाँ जी, तो बात ये है कि उनसे मेरा ताल्लुक, मेरी निस्बत, मेरा खानदान है, मेरी फैमिली है वो, इसलिए कि वो मेरे ही पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री से उनका ताल्लुक है, मैं उनका एहतराम अपने वालिद की तरह करता हूँ।
बिल्कुल सही, तो निस्बत इन्होंने सही ढूंढी फिर तो। अच्छा मियां वाली से है मुरीद खान साहब जी। मुरीद खान सलाम अलैकुम।
जी सलाम अलैकुम जनाब, मैं अर्ज करना चाहता हूँ अपने करीम साहब से कि ये जो पाकिस्तान और इंडिया की आवाम है, इनके तो आपस में प्यार मोहब्बत है, और ये जो हमारी हुकूमत है थोड़ा सा उनका रवैया और होता है, तो ये हम आपस में मिलकर क्यों नहीं फिल्में बनाते? और बहुत बेहतरीन लोकेशन है पाकिस्तान में, सवाद, हुंजा, गिलगित और ये हमारे शुमारी इलाके जात में, तो ये कश्मीर, मकबूजा कश्मीर और ये जम्मू कश्मीर और ये आजाद कश्मीर, ये रल मिलकर क्यों नहीं बनाते फिल्म जनाब
जी? आप को सवाल समझ में आया इनका जो था, परवेज कलीम साहब? मेरा ख्याल है परवेज साहब का ऐसा लग रहा है कि फोन तो नहीं कट गया, तो परवेज साहब आपका
जी मैं उनकी बात प्रॉपर सुन नहीं पाया।
अच्छा
उनका लहजा है कुछ, उनका टोन ऐसा था कि मैं उनकी बात को समझ नहीं पाया। मैं चाहूंगा कि आप उसको रिपीट करें कि उन्होंने सवाल क्या है।
जी जरूर, नहीं नहीं एक मिनट मुरीद खान साहब, आपका सवाल हो गया। अब आप, मैं आपका सवाल रिपीट कर देती हूँ, उनको सुनने में नहीं आ रही आपकी आवाज। इन्होंने ये पूछा था कि अवामी सतह पर तो दोनों जगहों पे मोहब्बत मौजूद है, अवाम की सतह पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में, तो क्या इसका इम्कान हो सकता है कि दोनों मुल्क मिलकर फिल्में बनाएं, तआवुन करें फिल्में बनाने में? और इन्होंने एक सवाल पूछा है जिसका जवाब मैं जानती हूँ कि आप क्या देंगे, क्योंकि इन्होंने कहा है कि हमारी जो लोकेशंस हैं जैसे कि गिलगित और वहाँ पे आके वो लोग शूटिंग करें और आप लोग इंडिया में जाके उनके पुरफजा इलाकों में करें, तो पाकिस्तान में तो इस वक्त जो अमन अमान की सूरत हाल है तो खुद पाकिस्तान के लोग वहाँ जाके शूटिंग नहीं कर रहे, तो मुझे आप बेहतर जवाब दे सकते हैं इसका। जी
देखिए बात यह है कि भाई का जो जज्बा है वो तो बड़ा सच्चा सच्चा है
जी।
वो चाह रहे हैं फ्रोग, वो चाह रहे हैं फ्रोग हो ना, फ्लरिश हो और ज्यादा बेहतर हो और ज्यादा अच्छी हो। बिल्कुल, मैं एक सिर्फ एक सवाल है मेरा भाई से कि मुझे ये बताइए कि 125 करोड़ रुपए में एक प्रोड्यूसर कोऑर्डिनेट करता है यहाँ से पाकिस्तान से, जिसमें जो 3-4-5 करोड़ की बस ज्यादा से ज्यादा फिल्म बनाने वाला है, मुझे बताइए उसका रेशियो क्या बनेगा। एक 100 करोड़ की फिल्म में वो हम उसे पार्टनरशिप में कोऑर्डिनेट करके उनके साथ हम करें, वो कॉम्बो बने कैसे, तो कैसे वो क्या रेशियो क्या है। तो देखिए बात यह है कि इनको सिर्फ ये है कि इनके जज्बे बड़े सादिक हैं, ये बड़ी सच्ची बातें करते हैं, ये कहते हैं कि यार फ्लैरिश हो, हमारी इंडस्ट्री भी ऐसे हो, हम लोग भी इतना करें। लेकिन थोड़ा सा कुछ मामलात हैं, कुछ ऐसे सिस्टम हैं, अभी हम चूंकि अब मैंने अर्ज किया है कि पाकिस्तान में ये बड़ी महंगी फिल्म होती है जो हम बना रहे हैं, सपोज ये 4-5 करोड़ वो ठीक है, इक्का दुक्का बन गई, वो 20 करोड़ की एक बन गई, मैं हमने एक 22 करोड़ की बना ली। लेकिन मजे की बात यह है कि बुनियादी तौर पर जितना भी चल रहा है वो भी हम लोग जो है वो इतने ज्यादा वो नहीं है कि हम इतनी इन्वेस्टमेंट कर सके, क्योंकि हमारे पास मार्केट नहीं है। जहां देखिए प्रोड्यूसर चाहेगा कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे उसका रिटर्न मिले, ठीक है। मैं उसको लाभ कन्विंस करूँ, सर मैं बड़ी अच्छी फिल्म आपके लिए बनाऊंगा, सर मैं आपके लिए बहुत अच्छा काम करूंगा। वो कहता सर मुझे ये बताइए कि आप ये एक फिजिबिलिटी तो बनाए ना मेरे लिए, एक रिपोर्ट ऐसी तैयार करें जिसमें मुझे पता चले कि मैं जो पैसे इन्वेस्ट करूंगा वो मुझे आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो ये एक मसला है जो अभी हमारे भाई थोड़ा सा जो सवाल करने वाले हैं वो प्यारे, जो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री भी उनको वैसी ही ताकत में दिखाई दे जैसे हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री है, तो ये ऐसे जरा थोड़ा सा
जी
अभी मसाइल हैं। इन्हें 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 अल्लाह पाक करे इनकी इनके जज्बों की सदाकत जो है उन्हीं की सत्य में जो है हमारा काम जो है वो उसमें हमारे सिस्टम, हमारा हालात वाकियात, हमारी एनवायरमेंट दुरुस्त हो और हम अच्छा काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम भी इंटरनेशनल मार्केट में हमारे बच्चे जो है वो कर रहे हैं।
और लग रहा है कि जब आप तादाद देखें ना, जो लोग फिल्में देखने आने लगे हैं और जो खत्म हो गई थी, दम तोड़ गई थी बिल्कुल, क्योंकि लोगों को अच्छा लगता है, ये एक बहुत ही अच्छी तफरी होती थी कि लोग जाते थे अपने पूरे खानदान के साथ फिल्म देखने। नहीं वही दोबारा शुरू हुआ है। जी हाँ बिल्कुल, मैं भी पाकिस्तान गई थी। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा चलिए एक झलक हम पहले ले लें आपकी सल्तनत का, आपने जिक्र किया था तो उसका थोड़ा सा प्रोमो से एक झलक।
Underworld, where power is the ultimate truth, but on the road to power, victory is all that matters. Saltanat.
उसके अंदाज बताते हैं कि वो कानून को डोमिनेट जरूर करना चाहता है।
जमीन पर रेंगने वाला कीड़ा जब जिस्म पर चढ़ा है तो उसको
The chief of B company, respectfully known as Aslam Bhai.
Aslam, 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 Aslam! Khoon kar dunga us Aslam ka main.
Mujh mein sama gaya, tu dhadkan ki tarah. Kaisa hai ye nasha, kya kahe? Mere dil ke falak pe hai tu.
तो करीम साहब ये बताइए मुझे कि आपके अक्सर फिल्मों में डॉन का और माफिया का जिक्र होता है, यानी आपको पसंद है ये सब्जेक्ट या इत्तेफाक से मैंने जो क्लिप्स ढूंढे उसमें ये जिक्र ज्यादा आ गया?
मैं तो गुनाह जैसी फिल्म, बाजारे हुस्न जैसी फिल्म, आपदा जैसी फिल्म, आसमान, लीडर, मैं तो इस तरह का काम करने ज्यादा करता हूँ.
अच्छा.
ये इत्तेफाक से आपके पास जो प्रोमोज हैं वो इत्तेफाक से सल्तनत और भाई लोग के वो सारे वो एक्शन टाइप थोड़ा सा है. ये मैंने बड़ा कम काम किया है वैसे.
अच्छा,
माफ कीजिएगा.
अच्छा, दूसरी सोशल
ज्यादा. हाँ, सॉफ्ट काम करना पसंद करता हूँ. सॉफ्ट ही मेरी फिल्में हैं. मैंने खुद भी जो बनाई है सॉफ्ट फिल्में बनाई है और मैंने कोशिश की है कि उन फिल्मों में जो बात कही जाए वो इतनी आहिस्तगी और इतने अच्छे तरीके से कही जाए कि लोगों के जहन तक पहुंचे, क्योंकि इबलाग का सबसे बड़ा जरिया फिल्म है.
बिल्कुल,
आप समझ रहे हैं.
बिल्कुल, और लोगों के दिल में रहती है वो कहानी ना बहुत
तो
दिन तक.
बाजारे हुसन मेरी उठाए ना
जी.
अभी आपको कहीं से लाए वो बाजारे हुसन हो या आप लीडर है या आसमान है या वतन के रखवाले है. मैंने तो नेचुरलिज्म पे पाकिस्तान की सरजमीन पे 7 फिल्में लिखी हैं सर.
अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कलीम साहब ये बात नोट की. आप जैसे लोग जो कि सचमुच जो बहुत काम कर रहे होते हैं ना, वो आम तौर से उस तरह के कामों से थोड़े बेनियाज होते हैं, जिससे वो मतलब सोशल मीडिया से ना, क्योंकि उनका अपना काम इतना अहम होता है उनके लिए. लेकिन इसका नतीजा क्या होता है, जैसे आज जब मैं आपके क्लिप्स, आप यकीन करें मैंने कई घंटे जब से मेरी आपसे बात हुई तलाश में करती रही, तो मुझे आपकी चीजें, बल्कि हर दफा इंडिया की कोई फिल्म उसी नाम की आ जाती थी. और तो इसकी वजह ये है कि आप अपने बच्चों के जिम्मे काम लगाइए, ये बच्चे काम बहुत अच्छा करते हैं.
ये हमारे बच्चे, देखिए मेरी बात सुनिए, बड़ा अच्छी बात की है आपने. देखिए वो हमारे प्रोमोज सोशल मीडिया पे फेंक सकते हैं, वो हमारी चीजें कर सकते हैं. आज यूथ के पास, आप भी जानती हैं मेरा ख्याल है, बेशक अमेरिका हो या लाहौर हो, कम अज कम जो फीलिंग्स हैं वो सबकी एक जैसी
एक जैसे हैं. बिल्कुल.
तो मैं समझता हूँ कि यूथ जो है वो थोड़ी बेनियाज है. वो अपने बाप का काम इस तरह से कि जी उसको ये भी चाहिए, उसको ये भी करना चाहिए हमें, वो मेरा काम कहेंगे. मेरा काम इतना है कि लोग थक सकते हैं, क्योंकि सर मैंने जिंदगी भर काम ही तो किया है, कुछ और तो किया ही नहीं, सिर्फ काम ही है और कुछ है ही नहीं जिंदगी में. ना कुछ खेल है,
मुझे
ना कुछ तमाशा है, कुछ भी नहीं है.
काम तो ये गवर्नमेंट का था ना कि कोई आर्काइव होता
से किया मैंने. मैं बड़ा आर्टिस्ट ही काम करने वाला आदमी हूँ. मैं तो ये इससे बड़ा घबराता हूँ ये लाउड काम से. लेकिन ये है कि कभी कभी इत्तेफाक से ऐसा काम भी करना पड़ता है और ये जरूरी भी होता है, क्योंकि हम अल्लाह के हुक्म से मार्शल कौम है, हमें ऐसा थोड़ा सा वो भी करना चाहिए. लेकिन ये है कि मैं जरा ऐसी मैं कोशिश करता हूँ ऐसा काम हो जो थोड़ा दिल की रगों में उतरे, ऐसा काम हो जो फीलिंग्स में आए, जो मोहब्बत की अलामत हो काम, वो काम हो जो प्रचार कर रहा हो अच्छाई का, तामीर का. मेरी ये आदत है जी.
वैसे करीम साहब इसी है, इसे एक
इस बात का ये पता नहीं, मेरे अंदर ही कोई ऐसा किस्सा है कि मैं इसी तरह कोशिश करता हूँ.
लेकिन करीम साहब इसे एक बात और भी तो पता लगती है कि ये जो अगर आपकी चीजें सोशल मीडिया पे हैं पड़ी हुई, तो इसका मतलब ये है कि ये किसी न किसी नौजवान ने डाली होंगी. और बात यह कि ऐसी फिल्में बनानी जरूरी हैं, क्योंकि आप तो हर तरह के आप ऑडियंस को लेते हैं. जी बिल्कुल.
चना जी बहुत सा काम है. आप मेरी जिलेक्शा देखिए, अभी उठा लीजिए यहीं से नेटफिल्म उठा लीजिए, अभी आप गुनाह के गाने उठा लीजिए, आप और बाजार हुसन का सब लेटते मौजूद है जी.
जी हाँ,
ये सब चीजें हैं.
अच्छा
है, अब पता नहीं किस किसने डाली है, हमें तो नहीं पता है. भारत जिसने भी डाली है भला उसका.
वैसे हम सुनने वालों से कहेंगे कि अगर आपको पसंद है परवेज कलीम साहब की इतनी फिल्मों के नाम आए हैं, और हमारे बहुत से सामीन जो हैं वो करते हैं यूट्यूब वगैरह पे चीजें डालते हैं, तो प्लीज आप ये चीजें जरूर डालिए ताकि लोगों को मिले. ये लोग जो है ना, इनका बहुत बड़ा काम है. मतलब अभी एक सवाल पूछा है मुजम्मिल साहब ने कश्मीर से, और उन्होंने वही बात पूछी है. उन्होंने कहा है कि एक ऐसे मुआशरे में जहाँ बड़ा मुश्किल है आर्ट का पनपना, मतलब इस लिहाज से कि फिल्म का आर्ट बिल्कुल खत्म हो गया था बीच में, तो किस तरह आपने सर्वाइव किया, आपसे ये सवाल है. लेकिन ये सवाल हम बाद में, इस पर काफी बात भी हो गई है. लेकिन मोहम्मद हुसैन हमारे साथ हैं बन्नू से, उनका सवाल ले लेते हैं पहले. जी मोहम्मद हुसैन साहब.
जी अस्सलाम वालेकुम.
वालेकुम सलाम मोहम्मद हुसैन.
मेहमान साहब से मैं पूछना चाहूंगा कि किसी भी सनत की कामयाबी के लिए जो है एडवर्टाइजमेंट और तशहीर, तो तशहीर जो है वो बहुत अहमियत रखती है। इंडिया वाले जो है वो अपनी फिल्मों की तशहीर तो बहुत खूबसूरत अंदाज से मुख्तलिफ टॉक शोज में बहुत खूबसूरत अंदाज से करते हैं। पाकिस्तानी फिल्मों की जो तशहीर है उससे मेहमान साहब मुतमैन है या कोई इकदाम वो तजवीज़ करेंगे कि तशहीर के सिलसिले में भी कुछ इकदाम करने चाहिए?
जी जरूर, बहुत अच्छा सवाल है जी। परवेज साहब, इनका सवाल सुना आपने? परवेज करीम साहब, परवेज साहब को
ये है कि कश्मीर पे मेरे ही बुजुर्ग नरियाज शाह साहब ने ये अमर बड़ी खूबसूरत फिल्म बनाई। ऐसी फिल्म कश्मीर पे बनी कि मेरा ख्याल है शायद फिर कभी ऐसी ना बन पाए, क्योंकि इतना पैशन, इतना पैशनेट होना किसी बंदे का वो बड़ा मुश्किल है। वो उन्होंने सरमाए की अर्निंग के लिए फिल्म नहीं बनाई थी, उन्होंने कॉज के लिए बनाई थी। वो कॉज के लोग जो हैं, देखिए ना इंडस्ट्री में वो लोग होने चाहिए ना, जहाँ भी हो कोई भी इंडस्ट्री हो उसमें ये होते हैं कि जी उनका कॉज है, नजरिया है, वो कोई ऐसी बात जो है वो करना चाह रहे हैं। तो यहाँ ऐसा नहीं है, इसलिए कि कोई भी उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा है ज्यादा। तो मैं सच बोलने का आदमी हूँ, मुझसे झूठ बोला नहीं जाता, मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं ये इसको ढकी छुपी बात कह के भी इसको मैं निचूजा देता बात को। लेकिन बात यह है कि आज भी अगर आज 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 अगर हमारे साथ कुछ लोग ऐसे हो जाएं जो लोग ये चाहें कि हम कश्मीर के मौजू पर बात करें, हम फिल्म बनाएं, तो हम बना लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसके लिए आज एक हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, एक चीज चाहिए होती है। ये कमर्शियल मीडियम है, इसमें लोग रिवॉर्ड चाह रहे होते हैं कि हमें रिटर्न क्या होगा। तो ये जरा भाइयों को ख्याल होना चाहिए कि दिल तो सबका चाहता है कि हम अच्छी कॉज की अच्छी बात करें, वो बात करें जो जनरल है, जो बात हमें जो हमारे दिल की आवाज है या हमारे अंदर की आवाज है वो हम बात करें। लेकिन मुसीबत ये होता है कि उसके लिए एक हमें इन्वेस्टर चाहिए होता है। तो वो कौन है? तो वो आपके सामने है, आप समझते हैं सारी चीजों को। तो भाई को मेरे को यही है कि इंशाल्लाह कोशिश होगी कि हम इस मौजू को जो है किसी भी तरीके से जो है फिर से तशद बान करने की कोशिश करें।
अच्छा, तो हमारे एक और मेहमान गुजरात से मोहम्मद इकबाल आए थे, मगर बदकिस्मती से उनका फ़ोन कट गया। और गाजी मुजम्मिल का सवाल मैंने आपसे पूछ लिया जो शोपियान कश्मीर से था कि वो सरवाइव करने का, तो ज़ाहिर है आपके तो तमाम कहानी असल में यही है। अच्छा ये बताइए, मैं ये बात सोच रही थी कि आपके वालिद साहब जो थे राजपूत साहब, आमतौर से जिनके अपने सिनेमा घर वगैरह होते हैं वो काफ़ी सख्त होते हैं कि बच्चों पर बड़ी पाबंदी होती है कि वो फिल्म देखने ना जाएं, तो ये आपको कैसे?
बिल्कुल आप पता नहीं, मेरा तो समझ में नहीं आ रहा कि आपको ये कैसे फील आ रहा है। मैं आपके फील को बड़ा साथ दूंगा कहना जी कि आप ये फील कर रही हो, मेरे बाप इतने ही सख्त थे। अच्छा। वो नहीं चाहते थे कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाऊं। आप यकीन कीजिए, जिस दिन मैं फर्स्ट टाइम जर्सी चौरी साहब के यहाँ एज कैमरा असिस्टेंट होने के लिए गया था, तो रात को जाहिर लेट हो गया, तो आप यकीन कीजिए बहुत मारा था मेरे वालिद ने।
अच्छा।
बहुत मैं पीटा, हाँ बहुत पीटा था मुझे कि तुम क्यों गए हो, तुम ये काम क्यों करने लगे हो। वो चाहते थे कि असल में होता ये है कि हम ना थोड़ा सा रेपो एक चीज होती है, हम थोड़ा सा उसको भी अभी तक नहीं पूरी तरह डिवेलप नहीं हो पाई, यानी इस तरह नहीं आ सकी कि ये लोग यही समझते हैं कि ये काम जो है ना, ये नाच गाना फला ये वो हमारे यहाँ, ये अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं कम वैसे अब, लेकिन ये है कि जो इसको जिसको कंट्रडिक्शन करते हैं इसकी। अब होता ये है कि जाहिर है रवायती जो होते हैं, हर बच्चे का माँ बाप यही चाहते हैं हमारा बच्चा लायक हो, हमारा बच्चा शरीफ हो, हमारा बच्चा शाम को 7 बजे दिए जलने से पहले घर आ जाए। वो एक जमाना था, अब चूंकि जमाना नहीं है था, तो एक अहद बदल रहा था। आज से 40 बरस पहले भी एक अहद ने करवट ली थी, उस वक्त भी शमशाद से लता और साइकिल से रफी कन्वर्ट हो चुका था, ठीक है ना जी। तो ये सारी चीजें हो रही थी, तो उस अहद में हम लोग आए तो बड़ी तकलीफें उठाई, क्योंकि घर वालों की तरफ से सपोर्ट जो है वो प्रॉपर इसलिए नहीं थी कि वो समझते थे कि हमारा बच्चा जो है वो इधर फिल्म में जाएगा तो शायद वो गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन मजे की बात यह है कि
गड़बड़ नहीं की आपने, कोई
की अपनी सोच थी और बिल्कुल शायद ठीक ही होगी।
नहीं, मगर आपने कुछ की गड़बड़ फिर? मैं पूछ रही हूँ कि कुछ गड़बड़ की फिर आपने?
देखिए मैं आपको सच्ची सच्ची बताऊँ, ये बड़ा खूबसूरत आपने सवाल किया है। देखिए गड़बड़ तो इंसानी जिंदगी का हिस्सा है
जी,
इससे कोई भागेगा, दामन चुराएगा और ये कहेगा कि जी नहीं नहीं मैं तो सर, तो मैं समझा झूठ बोलना तो बड़ा आसान है, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब आपके पास सामने माइक होता है और आप कोई बात कह रहे होते हो तो कतई आप झूठ नहीं बोलते, बल्कि इंसान का तराजू आपके हाथ में होता है उस वक्त, आपको झूठ बोलना भी नहीं चाहिए किसी को भी, यानी आप बैठी हुई है माइक के ऊपर, मुझे यकीन है कि आप पूरी अल्लाह के हुक्म से अपने कदो कामत के साथ और अपने पूरे एहसास के साथ जो भी बात कह रही होगी उसमें हिपोक्रेसी बड़ी कम होगी
जी, कोशिश तो यही होती है जी।
हाँ जी, तो यहाँ जहाँ हम लोग जहाँ काम कर रहे होते हैं वहाँ सारे देखिए वहाँ सौ तरह की बातें हैं, जहाँ हम लोग एक साथ होते हैं ठीक है, तो वहाँ सौ तरह की बातें जन्म लेती हैं, शादियाँ हो जाती हैं, मोहब्बतें हो जाती हैं, अफेयर हो जाते हैं, ये सारी चीजें ह्यूमन नेचर के करीब तर हैं। इससे आप ऐसे ही एक शराफत का वो एक प्रचार करते हुए और खुद को एक बड़ा पता नहीं क्या समझते हुए आप ये इसका कह दें तो ये एक अलग बात है, लेकिन मैं ये समझता हूँ ये ह्यूमन नेचर है, ये इंसानी फितरत के साथ साथ चलता हुआ सारा सिलसिला है, और जिंदगी एक ऐसा काफिला है जिसमें जो गुजर जाता है रास्तों से पीछे गुब्बारे रह जाता है, लेकिन फिर भी पलट पलट के हम उन लोगों को बड़े गौर से देखते हैं जो लम्हे हम पीछे छोड़ रहे होते हैं।
बस तो वालदेन का ये डर ठीक ही था कि अच्छा बच्चा जो है थोड़ा सा शरीर हो जाता है जब फिल्म वगैरह में जाता है।
जी, वो तो शरीर नहीं हो जाता, वो असल में फितरत है इंसान की।
नहीं मैं समझी, मैं आपको छेड़ रही हूँ, मैं इतराज नहीं कर रही आपके। अच्छा, गुजरांवाले से नजीर अहमद साहब हमारे साथ हैं। जी नजीर साहब अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत नवाज़िश होगी। मेरा सवाल जो है ना, जो आप भी बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं, लेकिन मेरी गुजारिश है कि पिछले प्रोग्राम में अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का कलाम चश्मे मस्त से अजद जिस गुलूकार ने गाया था, प्लीज अगर उसका नाम बता दे तो काइंड।
जी हाँ, वो कश्मीर से हमारे साथ थे भैया नज़ीर साहब, उनका नाम था कैसर निज़ामी, उनका नाम है, वो कश्मीर के बहुत ही पॉपुलर गुलूकार हैं और सूफी कलाम वो बहुत गाते हैं, और उनके ख़ानदान की नस्बत है सिलसिला चिश्तिया से, तो ये भी एक उनके दिल पे ना बहुत नक्श है बात। तो मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर, अगर आप दोबारा फ़ोन करें या पूछेंगे तो हम आप उनके लिंक भी दे दूँगी मैं, अगर आप फेसबुक पर आएँ तो। अच्छा चलिए, हम एक छोटा सा प्रोमो और फिर आप ही की फिल्म से गाना सुनते हैं कलीम साहब, उसके बाद फिर और बातें होंगी।
हुआ है
क्या कुछ तो कहिए ना, कहो ना कहो
कुछ तो चाहो
कम में बुबुश ना,
कुछ कहिए ना
लखोते हुआ कोशे ताको।
अपने सवालात के साथ इस प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा शिरकत करें, हमारे माहिरीन आपके सवालों के जवाब देंगे। हमारा ये प्रोग्राम पाकिस्तान में हफ्ते की रात को 10 से 11 बजे तक पेश किया जाता है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर मुफ्त कॉल कर सकती हैं। नंबर नोट कर लीजिए 0800-777-89। हफ्ते की रात 10 से 11 बजे तक फोन कीजिए 0800-777-89। प्रोग्राम है
Thank you.
سامعین، یہ پروگرام وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا ہے کچھ تو کہیے. ہمارے مہمان معروف ڈائریکٹر اور کہانی کار پرویز کلیم صاحب ہیں. پرویز صاحب، ہمارے ساتھ کالرز بھی ہیں، لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھ لوں. ایک فیس بک پہ کسی نے پوچھا ہے، آرزو اشفاق ان کا نام ہے، انڈین کشمیر سے، انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ کے پسندیدہ ایکٹر اور گلوکار کون ہیں؟
دیکھیے جی، میرے پسندیدہ جو گلوکار ہیں وہ میڈیسن صاحب اور میڈم نورجہاں، یہ میرے پرگتا، یہ میری پسندیدہ ہیں گلوکار. اور آج اگر آپ کرنٹ میں پوچھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یوتھ جو ہے وہ ان کا چونکہ عہد بدل گیا ہے، میں نے عرض کیا ہے کروٹ لی ہے، میوزک کا جو پریزنٹیشن جو سٹائل ہے وہ سارے کا سارا فیوژن اور یہ وہ آ گیا ہے، تو ظاہر ہے وہ ایک الگ سا ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. چونکہ عہد کوئی بھی ہو اور اس میں سر کوئی کسی بھی طرح کا ہو، وہ سر ہونا چاہیے، چاہے فیوژن ہو، چاہے غزل ہو، چاہے گیت ہو، چاہے کلاسیکل ہو، چاہے نیم کلاسیکل ہو، اس میں سر کا میزان قائم رکھنے والا سنگر اور گانے والا جو بھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ قابل داد ہے.
اچھا، آپ کے ساتھ ایک مطلب میرا خیال ہے جو پریولیج آپ کو حاصل ہے جنریشن کے گیپ کے لحاظ سے، وہ یہ کہ آپ کے بیٹے جو ہیں عدیل، وہ بھی آپ کے ساتھ، آپ دونوں مل کے کام کرتے ہیں کئی فلموں میں اور ڈائریکشن میں.
ماشاء اللہ، جی جی، وہ اتفاق ہے، میرے خوش نصیبی ہے کہ بھائی لوگ میں میرا اس کا ٹائٹل ایک ساتھ ہے، باپ بیٹے کا. وہ میرا اسٹوڈنٹ بھی ہے، میرا شاگرد بھی ہے، میرا بیٹا بھی ہے.
اچھا،
تو وہ ماشاء اللہ، وہ اس نے جو ہے اجیل پی کے نے ماشاء اللہ وہ اتنا اچھا ویڈیو کر رہا ہے، ایڈیٹنگ اس کا ماشاء اللہ بڑا لاجواب ہے. وہ اچھا اچھا یوتھ ہے نا جی، وہ تیز بچے ہیں ماشاء اللہ، اتنے اچھا کام کر رہا ہے وہ کہ میں داد دیتا ہوں اس کو، سچی بات ہے.
تو آپ نے اتنی تعریف کی ہے تو ہمیں عدیل کو بھی لانا پڑے گا اپنے کسی پروگرام میں، کیونکہ اگر آپ جیسا ڈائریکٹر، مطلب واقعی آپ تو گوہر شناس ہیں نا، تو آپ بلا وجہ تو تعریف نہیں کر سکتے. اچھا، تو اور بچوں کے بارے میں بتائیے اپنے، باقی بچے آپ کے.
جی باقی بچے دیکھیے کہ ایک بچہ ہے وہ اس وقت جو ہے وہ سنیماٹوگرافر بن رہا ہے وہ، کیونکہ میں دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جس شعبے میں آپ ہوتے ہو کم از کم اس شعبے کا آپ پہ بھی کچھ حق ہوتا ہے. جس شعبے سے آپ بچے پالتے ہو اسی شعبے میں آپ کو اپنے بچوں کو یہ، اگر وہ اچھا کام نہیں تو آپ کیوں کرتے رہے ہیں اتنا اچھا
جی.
تو اس لیے میں اپنے بچوں کو، ہاں میں اپنے، میرے دو بیٹے جو ہیں تین، وہ ماشاء اللہ اسی شعبے میں ہیں، اسی فلم میں ہیں، وزیر ہے، حسنین ہے، زین ہے، یہ میرے بچے اسی میں ہیں. ایک میرا بیٹا ہے جو وہ اس شعبے سے تعلق نہیں رکھتا،
اچھا
اس کو تھا ہی نہیں. ہاں، آصف محمد آصف اس کا نام ہے، آصف کریم کے نام سے وہ جانا پہچانا جاتا ہے. تو وہ ساؤنڈ کا کام کرتے ہیں، وہ کچھ اور طرح کا کام کرتے ہیں، وہ تو وہ اس طرح کا کام نہیں کرتے، وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں، مجھے نہیں اچھا لگتا.
تو دیکھیے جنریشن کتنا فرق ڈالتی ہے. جو آپ کے والد کی جنریشن ہوتی تھی وہ کہتی ہوگی کہ لڑکا بگڑ گیا فلموں میں چلا گیا، اور آپ یہ، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ لڑکا بگڑ گیا فلموں میں آیا ہی نہیں جی، وہ تو کسی اور طرف چلا گیا.
جی ہاں، وہ اور طرف چلے گئے، ظاہر ہے فرق آتے ہیں، وقت بدلتا ہے تو یہ تو ظاہر ہے نا جی، پھر ایک چینج آ جاتا ہے ایک بڑا، تو ہے وہ ہے وہ ہے جنریشن گیپ بھی ہے، وہ بھی ہوتا ہے، اس لیے ضروری ہے. لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اتنا آرتھوڈاکس نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کوئی پابندیاں چیزیں ایسی، بچوں کے شوق کو بھی دیکھیے اور پھر ان کو جو ہے اگر چل جائے، دیکھیے میرے گھر میں اگر فلم ہے، میں نے اگر فلم میں کام کر کے اپنے وہ بچے پالے ہیں تو میں سمجھوں گا کہ دنیا کا اعلیٰ کام ہے، یہ فائن آرٹ ہے. یہ اس کام میں تو سب کو آنا چاہیے، جو بچے بھی چاہیں جن کا شوق ذوق ہے وہ محنت کریں انشاءاللہ. اب تو ڈیجیٹل کام، اب تو بچوں کے ہاتھ میں کیمرے ہیں، اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ویڈیو یہ جو ہاتھ میں آپ کے موبائل ہے اس سے فلم بن سکتی ہے
وہ خود ہی روز بروز. ہاں، اسمارٹ فون اتنا اسمارٹ ہوتا جا رہا ہے روز بروز. اچھا، اسلم خان نیازی ہمارے ساتھ ہیں، ایڈوکیٹ میاں والی سے. جی اسلم خان نیازی صاحب.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی بالکل.
اب میں دراصل ابھی بیدار ہوا ہوں، اپنا نیند میں کچھ چلا گیا تھا اپنا، مطلب مجھے نیند آ گئی تھی، تو مجھے عدیل صاحب کا نام تو پتہ چل گیا کہ ان کے یہ شہزادے ہیں، لیکن آپ کے موجود مہمان کون ہے آج؟
میں ابا کا نام نہیں پتا تو پھر کیا پتا لگا. پرویز کلیم صاحب جو معروف فلم ڈائریکٹر اور کہانی کار، اور اسلم نیازی صاحب ہمارے بڑے باذوق سامع ہیں، یہ بھی بتا دوں آپ کو. کلیم صاحب جی. جی اسلم صاحب
جی، دراصل مجھے نیند آ گئی تھی، میں آپ کا پروگرام سنتے سنتے سو گیا تھا.
اچھا اچھا.
تو ابھی بیدار ہوا تو سچی بات ہے کہ میں نے آپ سے وہ کوئی
नहीं, परवेज कलीम साहब ने सैकड़ों फिल्में बनाई, सैकड़ों फिल्में बनाई हैं, कहानियां भी लिखी हैं, ये दोबारा से इनकी कोशिश है कि रिवाइव किया जाए पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को।
क्या नाम बताया आपने? कलीम,
परवेज, परवेज कलीम,
कलीम परवेज साहब,
जी
जी, परवेज
कलीम साहब,
जी परवेज कलीम। अच्छा, तो मतलब मैं मुस्तकिल हूँ, और लेकिन ये है कि मुझे सच्ची बात है कि कलीम साहब के बारे में ज्यादा इलम नहीं है, तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। उनके जो सरजादे हैं वो इनके साथ मतलब क्या वो करते, मावनत करते हैं
फिल्में बनाने में? ये मिलके इन्होंने एक फिल्म है भाई लोग, इसमें इन्होंने मिलके डायरेक्शन दी है उस फिल्म की। तो चलिए, बहुत शुक्रिया, आप सुनिए हमारा प्रोग्राम। जी जी जी, आप हमारा प्रोग्राम सुनिए। तो परवेज साहब, अभी मैं जब वही गूगल की फिर बात आएगी कि मैं जब आपके बारे में थोड़ा कोशिश कर रही थी मुख्तलिफ चीजें जानने की, तो उसमें एक जगह जिक्र था कि रजिस्ट्रेशन का एक सिलसिला शुरू किया है गवर्नमेंट ने फिल्म इंडस्ट्री में, तो जिसमें डायरेक्टर्स में बहुत अदम इत्तेफाक है, उस पे ये क्या इशू है रजिस्ट्रेशन?
रजिस्ट्रेशन बड़ा है तरीक का, तो देखिए बात यह है कि रजिस्टर्ड होना चाहिए प्रोड्यूसर्स को, ठीक है, क्योंकि वो लोग रजिस्टर्ड हो, वो आके डायरेक्टर रजिस्टर्ड अगर होता है, सपोज कि भी डायरेक्टर, देखिए डायरेक्टर कौन होता है, जो आदमी मेहनत करके एक अप्रेंटिस से असिस्टेंट से वो बंदा डायरेक्टर बनता है, दो तीन फिल्में बनाता है, तो फिर वो रिकॉग्नाइज होता है ना, लोग उसको मानते हैं ना कि ये डायरेक्टर है, उससे पहले तो नहीं मानते। तो रजिस्टर्ड वो डायरेक्टर एक, हाँ एक चीज मैं कह रहा था कि एक खास मुकर्रर कर दिया जाए तालीम का मैार, ये कह रहा था कि थोड़ा एजुकेशन, फिर वो ये कह रहा था कि कुछ लोग जो है वो जितना उनका एक्सपीरियंस है जहाँ जहाँ से वो गुजरे हैं वो उनका सीवी बड़ी पक्की होनी चाहिए, तो वो मिल मिला के ऐसे हो, तो वो कुछ बंदे नहीं उसको चाह रहे थे, कुछ लोग नहीं चाह रहे थे, तो वो मेरा ख्याल है कि रास्ते नहीं रह गया ये प्रेजेंट, हम लोग ये चाह रहे थे।
अच्छा अच्छा, हमारे साथ हैं अटक से महबूब इलाही साहब। जी महबूब इलाही साहब, महबूब इलाही,
अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम जी,
मेरा तकरीबन तीसरी मरतबा आपसे बात हो रही है, आंखों से नाबीना हूँ।
अच्छा,
और गांव है मेरा अटक में, तहसील हजरो है, नरटोपा गांव है।
अच्छा,
मेरे गांव के एक रहने वाले डायरेक्टर थे बाबा कलंदर।
अच्छा,
बाबा कलंदर के बारे में ये पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने कितनी फिल्में बनाई, कितनी पंजाबी और कितनी उर्दू, उसका आप कैसे आदमी थे, जरा इनसे मतलब जवाब लेना, और इनको मतलब है कि मेरी तरफ से बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।
महबूब इलाही साहब बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज जी।
बड़ा अच्छा, उन्होंने एक क्या कहते हैं यादव बखैर, एक पुरानी बात।
देखिए कलीम साहब, आप ये सोचिए कि एक छोटे से गांव से अटक के बोल रहे हैं, लोग कहते हैं कि फिल्मों में दिलचस्पी नहीं है, इनको ना सिर्फ फिल्मों में दिलचस्पी है बल्कि डायरेक्टर्स को जानते हैं, ये जानना चाहते हैं मजीद। असल में लोगों की दिलचस्पी नहीं है, बात ये दिलचस्पी किसी और लेवल पे जैसे कि आपने कहा होनी चाहिए। चलिए बाबा कलंदर के बारे में बताइए आप।
जी बाबा कलंदर जी हमारे बड़े बुजुर्ग थे, पुराने लोग थे, बहुत पुराने, आज से उन्हें इंतकाल किए हुए मेरा ख्याल है 30 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं, और वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में जब थे उन्होंने की, जब यादगार कर मैं उनका जिक्र करूंगा, दो फिल्में उनकी यादगार थी, पंजाबी जुबान में फिल्म महल्लेदार थी।
अच्छा,
जिसमें जुल्फी मरहूम ने रोल किया था, बड़ा आउटस्टैंडिंग रोल था, और हम लोग असिस्टेंट थे उस दौर में, ठीक है जी, मैंने उनके साथ भी काम किया है, बाबा कलंदर के साथ भी। फिर वो जिंदगी एक फिल्म बनाई उन्होंने जिसके म्यूजिक डायरेक्टर मास्टर अब्दुल्ला साहब थे, उर्दू जुबान की फिल्म थी ये, बड़ी खूबसूरत फिल्म बनाई उन्होंने, मालेदार बनाई। उसके अलावा भी फिल्में दो चार पांच सात ऐसी बनाई है उन्होंने, लेकिन वो खातर खा कामयाबी हासिल नहीं करती। ये दो फिल्में उनके रिकॉर्ड पे इतनी जबरदस्त हैं कि मेरा ख्याल है किसी फनकार के लिए ये दो फिल्में ही काफी हैं किसी डायरेक्टर के लिए।
वैसे आप बात कर रहे हैं तो मैं ये सोच रही हूँ कि आपकी आवाज बहुत अच्छी है, तो आप कभी कोई रोल वगैरह भी करते थे फिल्मों में या गाने का शौक था?
मुझे मेरी फिल्म अभी उठा ले यहाँ से, मुझे चांद चाहिए कहीं से नेट से, शान उसके डायरेक्टर थे, मैं राइटर था, उसमें मैंने एक्ट भी किया हुआ है।
क्या नाम क्या है फिल्म का, नाम क्या है फिल्म का? क्या
मुझे चांद चाहिए,
मुझे चांद चाहिए। अच्छा,
मुझे चांद जी, तो एक रोमांटिक फिल्म थी, तो उसमें वो उसमें मैंने एक रोल किया हुआ है, उसका फादर रोल है, देख लीजिए वो सारा अगर मिल जाए तो। अब तो खैर प्रोग्राम खत्म होने वाला है, 5 मिनट रह गए, तो खैर انشاءاللہ یہ ہے کہ بہت سا کام کیا ہے جی مجھے, میں چونکہ بنیادی طور پہ جی میں ریڈیو سے آیا ہوا آدمی ہوں.
اچھا.
میں آج یہ انتخاب کروں یہ بھائی صاحب میں ان کا آپ ریڈیو سے کر رہی ہیں, تو میں آپ کو بتاؤں کہ میں جب آیا تھا تو ریڈیو سے ہی میں نے کرنا کی تھی.
کیا کرتے تھے؟
سداکاری کا ہی میں کام, میں سداکاری.
اچھا.
اس وقت میرے پاس اور تو کام نہیں تھا نا, ڈائریکٹر تو بننا چاہ رہا تھا, رائٹر بننا, رائٹر بعد میں بناؤں وہ بننا چاہ رہا تھا, لیکن اتفاق یہ راستے نہیں ہوتے نا, راستے تو ہوتے نہیں ہیں, راستے تو آپ کو خود تھوڑی محنت سے پیشنیٹ ہو کے بنانے پڑتے ہیں, اور اللہ تبارک تعالیٰ پھر اس میں مدد کرتے ہیں, تو پھر آپ کا خود ہی تو اتنے برسوں میں کبھی بھی تھوڑا بہت نام ہو جاتا ہے, ایک مقام بن جاتا ہے, اللہ میاں بنا دیتے ہیں. تو بنیادی طور پہ میں آواز ہی کا جو ہے آدمی تھا, تو میں نے وہاں ریڈیو میں جو ہوتا تھا وہ اگر آپ کو یاد ہو یا کبھی آپ نے سنا ہو, خیر آپ کی کوئی عمر اتنی نہیں ہے, تو وہ اگر آپ نے سنا ہوا ہو تو وہ ریڈیو میں جب ڈرامے چلا کرتے تھے نا تو لوگ اس طرح دیکھتے تھے جیسے آج ٹی وی کے ڈرامے دیکھتے.
جی ہاں, اسٹوڈیو نمبر 9 تو مجھے یاد, اتنا مشہور ہوتا تھا اسٹوڈیو نمبر 9.
تو وہ جو ایک تھا ایک وہاں سپوز مجھے کبھی نہ پہلا ایک ملا تھا مجھے, وہ سینٹینس آج تک نہیں بھولا, شکور بیدل صاحب تھے, انہوں نے کسی سے سفارش کی اور مجھے وہ, یہ شکور بیدل وہ صاحب وہ ہیں جو خیام صاحب انتظار میں جو میوزک ڈائریکٹر ہیں ان کے بھائی تھے, ریڈیو پریزنٹ پروڈیوسر تھے لاہور میں. تو میں وہاں کینٹین پہ بیٹھا ہوا تھا تو مجھے انہوں نے کہا جا یار, تو میں چلا گیا, اور میں گیا تو انہوں نے کسی سے سفارش کی, پتہ نہیں دلیپ صاحب تھے یہ کون صاحب بھول جاؤں, بہت عرصے کی بات ہے, یہ میرا خیال ہے شاید 45 برس پہلے کی بات ہے.
اچھا.
میں شاید 16-17 سال کا تھا اس وقت, تو مجھے وہاں لے کے گئے, تو مجھے جو پہلا سینٹینس ملا کہ وہ یہ تھا کہ باہر بہت بارش ہے بیگم صاحب, باہر بہت بارش ہے بیگم صاحب, اگر آپ کہیں تو میں کھڑکیاں بند کر دوں.
اچھا.
یہ میرا پہلا زندگی کا شو بزنس نے ہو کے 17 دفعہ جو ایک یعنی یہ تو مجھے یاد ہے 16 یا 19 روپئے کا چیک مجھے ملا تھا.
اور آپ نے کتنی دفعہ اس کو کس کس ادا سے نہیں پڑھا ہوگا, کیونکہ پہلی پہلی تو
بڑے لحاظ سے, پھر میں نے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا ذرا تھوڑا سا ملازم جیسے ہوتے ہیں نوکر, منہ چڑھے بھی ہوتے ہیں گھر میں, وہ بھی انداز آپ اختیار کر سکتے ہیں, اور وہ جو ہوتے ہیں جو دبیل سے ہوتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں, تو مجھے تھوڑا سا آپشن مل گیا تھا, تو میں نے تو جیسے جیسے انہوں نے فرمایا تھا میں نے ویسے کیا اس وقت.
اچھا اچھا, آپ کے ایک اور فین ہمارے ساتھ ہیں خوشاب سے, شوکت علی صاحب. جی شوکت علی صاحب. شوکت صاحب
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام شوکت صاحب,
آج آپ نے بڑا اچھا مہمان بلایا, آپ تو بڑے عظیم آدمی ہیں, بڑے فنکار ہیں, یہ بڑے اچھے لوگ ہیں,
زبردست, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں,
میں آپ کا بڑی تعریف کر رہا ہوں, یہ تو بہت بہت ہی اچھا کیا ہے, جو کوئی گانا تو سنا دیں,
یہ تو میں بھی چاہتی ہوں کہ کلیم صاحب اتنے
کوئی گانا سنا دیں,
آپ کو اتنا چاہتے ہیں, چاہنے والے ہیں,
بول رہا ہوں شوکت علی,
شوکت علی صاحب آپ کو اتنا چاہتے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو گانا سنا دیں, ان کو بھی آپ کی آواز اچھی لگ رہی ہے.
میں گانا سنا دوں
بس ان کو,
دیکھیے سداکاری کچھ اور ہے اور اس میں گلوکاری کچھ اور ہے,
اپنی پسند کا کوئی شعر
ہے جی, تو میں ان کو ایک غزل ہے وہ میں سنا دیتا ہوں,
ضرور
اس کے یاد ہیں
جی,
ٹھیک ہے
جی,
تو وہ پتہ نہیں ان کو پسند آئے گی نہیں آئے گی,
کیوں نہیں آئے گی پسند,
وہ کچھ اوپر تو میں کرتا نہیں, تو وہ مجھے جو یاد ہے جو مجھے تھوڑا سا فیل ہے میرا,
ٹھیک ہے
میں سنا دیتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو,
پلیز میں تو بہت خوش ہوں گی اگر آپ سنائیں گے تو.
آیا تیری مہک خارتی گر ہو شایا پیمان بسک آیا میں خان بگو
واہ واہ, آپ کی آواز تو, آپ تو بڑے سر میں ہیں, سب سے بڑی بات تو یہ, بہت اچھا آواز بھی بہت اچھی ہے آپ کی, پتا ہوتا تو میں پہلے سے فرمائش کرتی آپ سے کہ پورا کوئی غزل سنائیے آپ ہمیں. اچھا کوئی ہمیں اچھا سا اپنی زندگی کا واقعہ سنائیے جس کا آپ کے دل پہ بڑا اثر ہوا ہو. میرا خیال ہے کہ انجم ذرا سا دوبارہ ملائیے، ان کا فون کٹ گیا ہے اور میں چاہتی ہوں ہم انہیں خدا حافظ کہہ لیں، لیکن اس دوران میں اپنے سننے والوں کو بتا دوں کہ اگر آپ اب بھی فون کرنا چاہیں تو آپ پتہ نوٹ کر لیجیے، معاف کیجیے گا، ٹیلی فون نمبر 08007779 یہ ہمارا پتہ ہے، یہ اور یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ ان کا فون کٹ گیا ہے اور لائن ویسے انجم ملانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے مہمان پرویز کلیم صاحب جو کہ مشہور ڈائریکٹر کہانی کار ہیں ان کو خدا حافظ کہہ سکیں معقول طریقے سے، اور وہ بیچارے ایک فنکشن میں تھے اس وقت، فلم میکنگ سے متعلق ایک فنکشن تھا جس میں وہ تھے، لیکن ہمارے کہنے پر وہ فنکشن کے دوران اٹھ کر آئے، اور آپ نے سنا کہ بہت اچھی سی انہوں نے باتیں کی، تو میں نے پہلے بھی اپنے سننے والوں سے درخواست کی تھی کہ آپ میں سے جو لوگ کرتے ہیں اس پہ یوٹیوب وغیرہ پہ ڈالتے ہیں ویڈیو اور آڈیو، تو پلیز آپ پرویز کریم صاحب کی فلموں کو ضرور ڈالیے کیونکہ اچھی سی فلمیں ہیں، گیت ڈالیے اس کے تاکہ یہ جو خزانہ ہے نا ختم نہ ہو۔ تو انجم آگے پرویز صاحب، میرا خیال ہے پرویز صاحب کی جی انجم بڑی خوشی سے مجھے بتا رہے ہیں کہ پرویز صاحب آگے ہیں، جی پرویز صاحب آواز آ گئی آپ کو؟ میں نے کہا کہ اس طرح تو ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے بغیر پراپر طریقے سے خدا حافظ کہے اور شکریہ ادا کیے بغیر۔
بڑی پیار، بڑی محبت، بڑی شفقت، بڑی اچھی باتیں کرتی ہیں آپ ماشاء اللہ۔ میں چونکہ میں نے نا آپ کے ساتھ فرسٹ ٹائم میرا وہ ہوا
جی جی،
تو مجھے بڑا اچھا لگا، اور ماشاء اللہ بڑا اچھا ٹون ہے آپ کا، بڑا اچھا اسٹائل ہے۔
بس مجھے بھی بہت مزہ آیا آپ سے باتیں کر کے، اصل میں میرے خیال ہے آپ اور میں دونوں باتوں نہیں ہیں، یہ باتیں ہم دونوں شوق
ایسا بھی ہے، ایسا بھی ممکن ہے، خیال ہے کہ جو بات کہہ دینے والے لوگ اس سے زیادہ اچھے ہوتے ہیں،
زیادہ اچھے ہوتے ہیں، بس یہ بالکل آپ نے میرے دل کی بات کہی اس وقت۔ تو اب انشاءاللہ آپ سے اگلی ملاقات ہوگی عدیل کے ساتھ، کیونکہ میں چاہوں گی کہ ہم عدیل کو بھی بلائیں پروگرام میں اور پھر ہم اس پہ بات کریں کہ دو جنریشنز مل کے۔
ضرور ضرور، اٹس مائی پلیجر جی، اس لیے تو میرا بیٹا بھی میرے ساتھ ہوگا، مجھے بڑا اچھا لگے گا۔
بالکل، تو بہت پرویز کریم صاحب دلی طور پہ میرا شکریہ قبول کیجیے آنے کا، اتنی اچھی باتیں کرنے کا اور گانا سنانے کا، تو بہت شکریہ۔ ہمارے مہمان پرویز کلیم صاحب تھے، ہمارے پروڈیوسر تھے انجم گل، اور ہماری انجینئر تھی زینب۔ شہناز عزیز کو اجازت دیجیے، خدا حافظ، اور یہ گیت سنیے
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔